प्रातः क्लास चल रहा था, एक ग्यारह 1966 बात चल रही थी। शिव की जो पूजा करते हैं तो इनके ऊपर अक के बच्चे जो इनके ऊपर फिदा होते हैं या इनके बनते हैं, इनके ऊपर ये चढ़ते हैं ना, अक के फूल। तो शिव बाबा के ऊपर आकर के ये सभी कांटे चढ़ते हैं, यानी उनके बनते हैं। अब फूल को कांटा क्यों कह दिया? क्योंकि वो जो छोटे छोटे फूल होते हैं, अक के फूल दुर्गंध वाले होते हैं। विचार की दुर्गंध आती है, और जिन छोटे फूलों में बचपन से ही सोसाइटी के प्रदूषण के कारण विचार की बदबूएं आने लगती हैं, वो सुखदाई बनेंगे या दुखदाई बनेंगे? बाबा के ऊपर तो अर्पण होते हैं, मना इनके ऊपर अर्पण होते हैं। इनके मना राम और कृष्ण के ऊपर अर्पण होते हैं, मना शिव बाबा के बनते तो हैं, लेकिन वो विचारी वृत्ति होने के कारण वो कांटे की तरह दुखदाई बन जाते हैं, रहते हैं बाबा के घर में, खाते हैं बाबा के घर में, सोते हैं बाबा के घर में, सब प्रकार की परवरिश बाबा के घर में लेते हैं, लेकिन बुद्धि उनकी कहाँ रखी रहती है? कहाँ चली जाती है? जहाँ से उनकी बुद्धि में, उनके तन में प्रदूषण आया, वो विचारी बुद्धि बाबा के घर में, बाबा के बच्चों के रूप में जो भांति बनते हैं, उनके लिए सुखदाई नहीं बन पाते, दुखदाई बन जाते हैं, कांटे बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा के ऊपर यक के फूल, धतूरे के फूल, ये बदबू वाले फूल सभी आकर के चढ़ते हैं, अर्थात आकर के उनके बनते हैं। और ये फिर उनको दुखदाई कांटों से फूल बनाने की कोशिश करते हैं। ये माने कौन है? रामकृष्ण की आत्माएं जो निमित्त बनती हैं, निमित्त माने साकार में निमित्त बनती हैं, तो पुरुषार्थ तो कराते हैं, पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने लिए, आत्मा के लिए पुरुषार्थ तो कराते हैं। कोई देह की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ नहीं कराते हैं। आत्मा का कनेक्शन 84 जन्मों से है, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है, और देह का कनेक्शन इसी एक जन्म से। तो देह के लिए जो करते हैं वो अल्पकाल की प्राप्ति करते हैं। बाबा उनसे सदाकाल के अनेक जन्मों की प्राप्ति कराना चाहते हैं, ऐसी कोशिश करते रहते हैं। तो कोई फूल बनते हैं, कोई कैसा बनते हैं, सुखदाई हल्की स्थिति वाले फूल तो नहीं बनते, कांटे बन जाते हैं। कांटों में भी वैरायटी होती है, कोई छोटे कांटे, कोई बड़े कांटे। तो वैरायटी होती है ना, कोई भी बगीचे में जाकर देखो, स्थूल बगीचे में जाके देखो, वैरायटी देखेंगे ना। तो वो है फूलों की वैरायटी, फिर सत्युग में भी ऐसे ही फूलों की वैरायटी होगी, परंतु वहां कांटे नहीं होंगे। देखो कोई ऐसे भी हैं कि बाबा के घर में भोजन तो खाते हैं, अब बाबा के घर में तो ब्रह्मा भोजन ही मिलेगा। ब्रह्मा भोजन की तो शास्त्र में बड़ी भारी महिमा है। 1/11/1966 की वाणी का 6वां पेज, वो संस्कृत में एक श्लोक भी है, ब्रह्मा भोजन ब्रह्मास्मि। ब्रह्मणो अर्पणम, वो भक्ति मार्ग वाले तो ब्रह्म ब्रह्म करते रहते हैं। या महिमा तो गुप्त है, उनको पता ही नहीं है, क्योंकि भक्ति मार्ग में जो भी भक्ति होती है, जो भी महिमा होती है, जिसकी भी होती है, वो सब फालतू है, क्योंकि जानती तो कुछ भी नहीं है। तो वो भी बेचारे ब्राह्मण जानते नहीं है कि हम ब्राह्मण कैसे ठहरे। सिर्फ कहने मात्र के ब्राह्मण है या वास्तव में ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण है? भी क्यों लगा दिया? वो भी ब्राह्मण जानते नहीं है, माना कोई दूसरे ब्राह्मण भी हैं, वो भी नहीं जानते हैं। तो एक तो भक्ति मार्ग वाले, वो तो जानते ही नहीं थे, अभी भी नहीं जानते, लेकिन जो ज्ञान मार्ग में चलने की हामी भरते हैं वो भी बेचारे ब्राह्मण जानते नहीं हैं कि हम ब्राह्मण कैसे ठहरे। ब्रह्मा की औलाद हैं या ब्रह्मा कुमार कुमारियों की औलाद हैं? है ब्रह्मा की औलाद? ब्रह्मा है वो ब्राह्मण, तुम ब्राह्मण की बात नहीं कही यहां। वो ब्राह्मण जानते हैं हम ब्रह्मा की औलाद कैसे है, ब्राह्मण है वो तो जानते ही नहीं है, क्योंकि शिव की औलाद शैव कहे जाते हैं, विष्णु की औलाद वैष्णव कहे जाते हैं, फॉलोअर्स के अर्थ में एक मात्रा बढ़ जाती है। तो ये ब्राह्मण तो अपन को कहते हैं, लेकिन उनसे पूछा जाए तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है तो कह देंगे सूक्ष्म बतन। फिर तुम यहाँ कहाँ से आ गए? तो बेचारे नहीं जानते। अरे यहाँ बाप जब आते हैं इस सृष्टि में तो चार वर्णों की रचना करते हैं। नंबर वार जो गीता में लिखा हुआ है चातुर्वर्ण्यम मया षष्ठम गुण कर्म विभाग से, गुण कर्म के विभाग के द्वारा चार वर्णों की रचना करता हूँ। तो उन चार श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वर्णों में अव्वल नंबर वर्ण कौन सा है? शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय या ब्राह्मण? ब्राह्मण वर्ण ही सबसे श्रेष्ठ है। तो ब्रह्मा तो पहले चाहिए ब्राह्मण बनने के लिए, जिससे बाप भगवान सृष्टि रचते हैं। वो ब्राह्मण क्या कहेंगे? हैं? वहां ब्रह्मा है कहेंगे, है तो सूक्ष्म बतनवासी, परंतु गुलियार दादी में आकर प्रवेश करते हैं। तो पूछा जाए भगवान बाप तो कहते हैं मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ, तो क्या गुलजार दादी को कोई ब्रह्मा कहता है? कोई मानता है ब्रह्मा? नहीं। जिससे भगवान आकर बाप आकर के सृष्टि रचे, नई सृष्टि, तो देखो ब्राह्मण तो नई सृष्टि में पहले होना चाहिए, पहले ब्राह्मण हो ही तुम, वे नहीं क्या पहले नंबर के ब्राह्मण तुम हो। इनको चोटी वाले ब्राह्मण कहा जाता है। शरीर में पहला हिस्सा कौन सा है? सबसे ऊंचा चोटी। जैसे दुनिया में भी कोई कहे कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दुनिया की, है एवरेस्ट चोटी, तो सबसे ऊंची हुई ना, तो तुम भी ब्राह्मणों के बीच में ऊंची चोटी वाले ब्राह्मण हो। चोटी दिखाते हैं ना भक्ति मार्ग में, चोटी में जब स्मृति की गांठ लगाते हैं तो कैसा निशान बन जाता है, है? शिवलिंग जैसा निशान बन जाता है। तो देखो वहाँ भक्ति मार्ग में तो ब्राह्मण दिखाते ही नहीं है, ब्राह्मण कहाँ भी नहीं दिखाते हैं। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चार वर्ण दिखाते हैं, ब्राह्मण तो दिखाते ही नहीं। विष्णु के विराट रूप में ब्राह्मण दिखाते हैं, हैं? ब्राह्मणों को क्यों उड़ाई दिया है? यहाँ जो भक्ति मार्ग वाले ब्राह्मण हैं ना, उन्होंने भी क्या किया, ब्राह्मणों को उड़ाए दिया है। तो देखो विराट रूप जब बनाते हैं उसमें चोटी ब्राह्मणों की दिखलाते ही नहीं है, कहाँ की यादगार हुई, शूटिंग कहाँ होती है, ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में ही शूटिंग हो रही है। तो फिर ब्राह्मण जो कहते हैं हम ब्रह्मा के मुख से निकले, हम ब्रह्मा की औलाद हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, तो पूछा जाता है आप कहाँ से आए, तो कहेंगे ब्रह्मा मुख से आए, इसलिए ब्रह्मा मुख की औलाद है। तो देखो उन ब्राह्मणों को भी देखो और तुम ब्राह्मणों को भी उठाओ, तो भी ऐसा बोलने से भी बहुत ब्राह्मण उठ सकते हैं कि तुम ब्राह्मण अपन को कहलाते तो हो परंतु तुमको नशा ब्रह्मा की कोख का, ब्रह्मा की गोद का है, या ब्रह्मा के मुख से निकली हुई भगवान शिव की वाणी का ज्यादा नशा है तुमको, तुमको वाणी का नशा है और उन ब्राह्मणों को, उनको गोद का नशा है। तो ब्रह्मा जवाबे रचना रची जाती है नई, बाप आकर के ब्रह्मा द्वारा पहले ब्राह्मण फिर माने बाद में क्या करते हैं, पहले ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण फिर ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं। तो तुम पहले ब्राह्मण बनते हो फिर बाद में इसी जीवन में तुम देवता बनते हो। अब कोई बतावे ब्राह्मण से देवता कैसे बनते हैं, तो वो भी तो समझने की बात है ना। ब्राह्मण तो नौकुरियों के होते हैं, नंबरवार ऊंचे नंबरवार नीचे, तो ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण जो बनते हैं, संपूर्ण ब्राह्मण बनते हैं, उनको कहा जाता है ब्राह्मण सो देवता। तो ये भी तो समझने की बात है ना, ब्राह्मण हो गए संगम युग के और कलयुग में जो हैं वो हैं शूद्र ब्राह्मण। क्या कहा, पहचान बता दी, संगम युग के ब्राह्मण हो गए, उस संगम युग को कलह युग नहीं कहा जाएगा, कलह कलेश का युग कलयुग नहीं कहा जाएगा, संगम युग कहेंगे। संगम का मतलब क्या हुआ है, श्रेष्ठ और निकृष्ट, ऊंचे और नीचे दोनों का संगम, क्या? किसका किसका संगम? ऊंचे और नीचे का संगम, मेल हो गया। अरे ये तो वंडरफुल बात हो गई। क्या वंडरफुल बात हो गई? कलह कलेश की दुनिया, और जहाँ कलह कलेश बिल्कुल होता ही नहीं, सतयुग स्वर्ग की दुनिया, दोनों का मेल हो गया। कैसे कैसे मेल हो गया? जगदम्बा विनाशकारिणी महाकाली और महागौरी पार्वती, लक्ष्मी कहो, दोनों का मेल हुआ तो कहेंगे मां लक्ष्मी संपूर्ण है। ऐसे ही पतितम कामी कांटे वाला रथ, उस रथ का ऑनर आत्मा, और उसमें मेल किसका हुआ? एवर प्योर परम पिता परमात्मा का। तो एक ऊंचे ते ऊंच और दूसरा नीचे ते नीच, दोनों का क्या हुआ? मेल हो गया। एक भरी हुई बैटरी हो और दूसरी बिल्कुल खाली बैटरी हो, दोनों का मेल हो जाएगा तो फिर क्या परिवर्तन होगा? है? है? जो खाली बैटरी है वो भी चार्ज हो जाएगी। तो देखो यहाँ संगम है कलयुग के सूत्रों का और सतयुग में बनने वाले ब्राह्मण सो देवताओं। ब्राह्मण जिनके लिए ब्राह्मण देवी देवताएं इन ब्राह्मणों की महिमा करते हैं और ब्राह्मणों के भोजन की भी बड़ी महिमा करते हैं। क्या ब्राह्मणों में नौ कुरियां, ऊंचते ऊंचे कुरी वाले ब्राह्मण सो जो देवता बनते हैं सोलह कला संपूर्ण, वो सूर्यवंशी, और फिर नीचते नीच नौवीं कुरी के ब्राह्मण, दोनों का मेल होगा। तो ऐसे भी नहीं है कि ब्राह्मण जब बैठ करके भोजन पाते हैं तब ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। ब्रह्मा भोजन तो कोई सिर्फ ब्रह्मा को याद करते होंगे क्या? कहा ब्रह्मा भोजन करते करते किसको याद करते होंगे? ब्रह्मा को याद करते होंगे, शिव को तो याद नहीं करते होंगे। है शिव भोक्ता है और ब्रह्मा भोक्ता है, एक भोक्ता और एक अभोक्ता। तो भोजन करने वाले किसको याद करते हैं? हैं? भोक्ता को याद करते हैं तो संघ का रंग किसका लगेगा? हैं? भोगी का लग जाएगा। उनको ये मालूम ही नहीं है, ये ज्ञान की बात उनको पता ही नहीं है। क्या? कि जो ब्रह्मा भोजन हम करते हैं वो ब्रह्मा नाम कैसे पड़ता है? है? जिस तन में प्रवेश करते हैं कौन? शिव, उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। तो जब ब्रह्मा भोजन करते हैं तो उसमें कौन सी सोल प्रवेश है? शिव की सोल प्रवेश है। जो आप भोगता है, तो उसकी याद में भोजन करेंगे तो निराकारी स्टेज वाले या भोक्ता बनेंगे या भोगी बनेंगे? हैं? अभोक्ता बनेंगे। जैसा संग वैसा रंग, जैसा अन्न वैसा मन बनेगा। तो कितनी कितनी समझने समझाने की बहुत बातें हैं। देखो ज्ञान तो है थोड़ा, परंतु उस थोड़े ज्ञान को भी, सार रूप ज्ञान को भी बाप आकर समझाते हैं विस्तार में। फिर कह देते हैं दो बातें याद करो, क्या? अलग और बे। अलग क्या है? अरे अलग और बे में क्या खास अंतर है? उर्दू में पहले दो अक्षर हैं, पहला अलफ दूसरा बे। जैसे अंग्रेजी में ए बी, ऐसे ही अलफ और बे दो अक्षर हैं। अलफ माने क्या? खड़ा डंडा, जो आदि से अंत तक, जो आत्मा पुरुषार्थ में खड़ी रहती है, हिम्मत हार के, हार्ट फेल होकर के गिर नहीं जाती। गिर जाती है? गिरती नहीं है। हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। और बे, बे माने पड़ा डंडा, हिम्मत हार गई। हिम्मत हारे हार, हिम्मत करने से जीत, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो देखो ये अलफ और बे तैयार हो गए, पीछे ये डिटेल की समझानी है, रचयिता और रचना को जानने की बात है। रचयिता है अलफ और रचना है बे, क्योंकि भक्ति का भी तो समझाना पड़े ना। तो भक्ति में ये सब क्या क्या करते रहते हैं, उन भक्ति करने वालों को तो कुछ मालूम नहीं पड़ता है। जो भक्ति करने वाला हुआ वो हुआ भगत, क्या करता है? भक्ति करता है, भागता रहता है। आज इसमें बुद्धि लटक गई, कल उसमें लटक गई, परसों उसमें लटक गई। देवताएं सतयुग देवताओं के, सतयुग में त्रेता में देवताओं की बुद्धि भागती रहती है क्या? हैं? नहीं, उनकी बुद्धि एकाग्र रहती है। ब्रह्मपुटी में क्या देखते हैं? हैं? आत्मा को देखते हैं, तो बुद्धि एकाग्र रहती। और द्वापर युग से क्या होता है? वही देवताओं की बुद्धि द्वापर युग से कैसी होने लगती है? द्वैतवादी। और धर्म पिताएं आते हैं, ये भारतवासी उनकी बातें सुनते हैं, तो विविचारी ज्ञान हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं एक से ज्ञान सुनना चाहिए। अनेकों से ज्ञान सुनेंगे तो ज्ञान कैसा हो जाएगा? विविचारी ज्ञान हो जाएगा। विविचारी ज्ञान हो जाएगा तो विविचार फैलाने वाले धर्मों में जाके गिरेंगे। देवी देवता सनातन धर्म को छोड़ करके और दुनिया में जितने भी धर्म हैं, इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन आदि, ये सब व्यभिचार फैलाने वाले हैं या घटाने वाले हैं? व्यभिचार बढ़ाने वाले। बाबा नहीं कहते हैं, अगर मैं किसको कहता हूं कि तुम भक्ति करो तो तुम तो भगत है, यानी तुम तो दुर्गति को पाए हुए हो गए ना। बाबा नहीं कहते हैं, क्या क्या करो, भक्ति करो, भागो, बुद्धि से इधर उधर भटको। और मनुष्य क्या कहते हैं, मनुष्य कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है। भगत क्या कहते हैं, भगवान सर्वव्यापी है। तो सर्व में बुद्धि भटकाएंगे या एकाग्र होगी, है भटकाएंगे तो भक्ति बन जाएगी। तो देखो बाबा कोई भक्ति करने वाले से गुस्सा नहीं करते हैं, है करते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं। बाबा जब गुस्सा करते हैं तो भी सिर्फ इतना करते हैं कि तुम तो कोई भगत हो, माने बुद्धि को भटकाने वाले हो, खुद भी भटकते हो और दूसरों को भी भटकाते हो। बस जो तुमको कितनी बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी गाली मिल गई एकदम, यानी तुम दुर्गति को पाए हुए हो। ऐसे बाबा क्यों कहते हैं कि नहीं, कोई वो मानते हैं कोई बात तो कह देते हैं तुम तो बुद्धू हो, तुम तो भगत हो, तुम तो मानते ही नहीं। अरे तुम भगवान की ही बात नहीं मानते हो, हाँ तो भगवान की ही बात नहीं मानते हो तो फिर क्या कहें, बुद्धू या समझदार? बुद्ध। भगवान की भला कोई नहीं मानेंगे तो उनको बुद्धू ही तो कहेंगे। तो बाबा यहाँ भी तो ऐसे ही कहते हैं ना, जब संगम युग में तुम ब्राह्मण बच्चों के सामने बाबा आते हैं तो भी यही कहते हैं, क्या है, क्या तुम भगवान बाप की भी नहीं मानेंगे? मानेंगे या नहीं मानेंगे? मानेंगे, मानेंगे तो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के, माने ब्राह्मणों में पक्की कुरी वाले ब्राह्मण बनेंगे। नहीं मानेंगे तो उनकी पहचान ही ये है कि वो बाबा की एक बात मानेंगे और दूसरी बातें नहीं मानेंगे। जब मानेंगे ही नहीं तो चलने का तो सवाल ही नहीं। तो बाबा यहाँ भी ऐसे कहते हैं ना, बुद्धू अक्षर बाबा बहुत काम में लेकर के आते हैं, तुम तो बुद्धू हो, भगवान बैठ करके तुमको समझाते हैं, जिसको कहते हैं ऊंचे थे ऊंचा भगवान वो तुमको बैठ करके समझाते हैं। तुम इतने बुद्धू हो गए हो, बुद्धू कहो पत्थर बुद्धि कहो, पत्थर बुद्धि को ही बुद्धू कहा जाता है। अरे पत्थर में बुद्धि होती है क्या? नहीं, तो समझते ही नहीं हो ना, क्योंकि वो जो कुछ भी करते हैं बेसमझी का काम करते हैं। अरे ये तो फिर भी तुम्हारा बाप है ना? कौन? जिसकी तरफ इशारा किया, कौन है? मनुष्य सृष्टि का बाप है ना? और उस मनुष्य सृष्टि के बाप में आत्माओं का बाप भी प्रवेश होता है तो मनुष्य सृष्टि का बाप साबित होता है। अगर आत्माओं का बाप प्रवेश न करे तो कोई पहचानेगी भी कैसे? तो बाप बना है ना फिर भी, कौन? जिस मुकर्रर रथ में मैं आता हूँ वो तुम्हारा बाप बना है ना? किसका बाप बना है? अपने बच्चों का बच्चों का बाप बना है। अगर समझो चिट्ठियां भी लिख करके देते हो, कोई बच्चे भूल कर देते हैं तो नाम किसका बदनाम होगा? बाप का नाम बदनाम होगा, शिव बाबा का नाम बदनाम होगा ना। अरे भगवान के बच्चे वो भी ऐसी ऐसी भूलें करते हैं, तो शिव बाबा उस बच्चे को जो इनके द्वारा कोई भी बात हुई और कुछ समझो उल्टी सुल्टी बात हो गई तो ड्रामा के प्लान अनुसार वो सुलझाने के लिए भी वो शिव बाबा बांधा हुआ है। तुमको चिंता करने की कोई दरकार नहीं है, नहीं तो बोलेगा हमारा मुरब्बी बच्चा, उनसे भूल होती है तो फिर औरों से भी बहुत भूलें होती होंगी। क्यों है? जिसको बाबा अपना अच्छा बच्चा समझते हैं उससे ही भूलें होती हैं, तो औरों से भी जरूर भूलें होती होंगी। तो ड्रामा में ये नूंद है कि अगर इनसे कोई भूल होगी भी, इनसे माने किनसे है, ड्रामा में ये नूंद है अगर इनसे कोई भूल होगी भी किनसे है, किसे, कौन मुरब्बी बच्चा, रामकृष्ण से, इनसे माना बहुवचन है, एक के लिए नहीं बोला, इनसे कोई भूल होगी भी तो भूल भी उनमें से भी फायदा निकल आएगा। क्या रामकृष्ण की आत्माएं संगम युग में ब्रह्मा या शंकर के रूप में कोई भूल भी करेंगे तो भी उस भूल में से क्या निकल आएगा? तुम्हारे लिए फायदा ही निकल आएगा। समझा ना? हाँ, अगर फायदा नहीं निकले तो भगवान बाप की आबरू ही चट्ट हो जाए दुनिया में। क्या? क्योंकि बड़ा बच्चा है ना। कौन बड़ा बच्चा है, हैं? बड़ा बच्चा कौन है? हाँ, क्योंकि बाद में जब फायदा डिक्लेयर होगा तो उस समय कृष्ण वाली आत्मा जो सृष्टि का पहला पत्ता है वो तो नहीं होगी, साकार में होगी नहीं होगी, तो कौन मौजूद होगा है? राम वाली आत्मा मौजूद होगी। तो ये बड़ा बच्चा है ना, कैसे, ब्रह्मा विष्णु शंकर ये शिव बाबा के तीन बड़े थे बड़े बच्चे हैं, उनमें भी बड़ा बच्चा कौन कहते हैं, देव देव महादेव ब्रह्मा देव विष्णु देव और शंकर महादेव, तो बड़ा बच्चा हुआ ना। तो सारा मदारी है इनके ऊपर। क्या कहा है? सारा मदार किसके ऊपर हुआ? इनके ऊपर। इनके क्यों कह दिया है? क्योंकि एक में ही शिव बाप के दो बच्चे काम करते हैं। कौन कौन? राम और कृष्ण की आत्मा जिनको कहते हैं बाप दादा, राम वाली आत्मा बाप, राम को बाप कहा जाता है, और कृष्ण वाली आत्मा कृष्ण को बच्चा कहा जाता है, कृष्ण की पूजा करते हैं तो कौन से रूप की पूजा करते हैं, बड़े रूप की या बच्चा रूप की? बच्चा रूप की। तो इसलिए भले ये कुछ भी कहते हैं, कौन है राम और कृष्ण वाली आत्माएं संगम युग में जो भी चोला धारण करती हैं, जिनका नाम पड़ता है ब्रह्मा या शंकर, तो ये दोनों कुछ भी कहते हैं, अरे कुछ भी कहते हैं, अरे ये करो, कहते हैं तो क्या करना है, ये करो। वो समझते हैं कि ये करेगा तो नुकसान होगा क्या है? ना ना ना, कहा है ना, ये कहते हैं तो कर दो। वैसा करने से तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, वो नुकसान से भी तुम्हारा फायदा ही निकल आवेगा। क्या अभी जो नुकसान दिखाई पड़ रहा है उस नुकसान में से भी तुम्हारा फायदा निकल आएगा? तुम क्यों ये समझते हो कि नुकसान होगा? 1.11.66 की वाणी का 7वां पेज। अरे नुकसान की तो कोई बात ही नहीं है, क्यों? अरे शिव बाबा कल्याणकारी, हमारी आत्मा का पार्ट भी कल्याणकारी और ये सारा ड्रामा भी कल्याणकारी, तो नुकसान की बात हो सकती है? हर बात में कल्याण ही कल्याण है। इस संगम युग का टाइटल क्या है? कल्याणकारी संगम युग। देखा भी जाता है कोई भी चीज कुछ भी पास्ट हो जाता है, देखते हैं देखो कल्याण हो ही गया, इस बात से भी कल्याण हो गया, कोई नुकसान तो नहीं है। सो भी ड्रामा में था। फिर ये भी कहते थे ये भी तो ड्रामा में था ना, कि अगर ये अकल्याण भी हुआ है सो भी तो ड्रामा में था, फिर भी तो देखो 5000 वर्ष के बाद ये कल्याण होना ही है। और ये तो श्योर है कि अंत में तो तुम्हारा कल्याण ही होगा। अभी माया हमको हराती रहती है, तो कल्याण हो रहा है कि अकल्याण हो रहा है? क्या हो रहा है? ऐसा लगता है कि अकल्याण हो रहा है, लेकिन बाबा कहते हैं अंतिम विजय तुम्हारी है। अभी कितना भी तुम्हारी हार होती रहती है, माया से लथेड़े खाते रहते हो, फिर भी बाबा कहते हैं अंतिम विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो देखो है ही कल्याणकारी। तो ये तो जरूर है कि माया के द्वारा भूलें तो होती रहती है, सब बच्चों की भूलें होती हैं, इनकी भी भूलें होती हैं, किनकी हैं? राम और कृष्ण की भी भूलें होती हैं, समझा ना? परंतु राम और कृष्ण के लिए तो बाबा बैठे हैं ना, हैं? इनके लिए जिम्मेवार कौन है? बाबा बैठे हैं ना, वो तो है ही कल्याणकारी। जब वो कल्याणकारी है, सबके लिए कल्याणकारी है या कोई 1, 2, 4 के लिए कल्याणकारी है? सारी दुनिया के लिए कल्याणकारी है, तो सबका कल्याण ही कर दें। देखो ये लड़ाइयां लगती हैं,
हिस्ट्री में लड़ाइयां लगी ना, जो मारते पीटते कूटते रहते हैं, क्या कर रहे हैं, चोरी चकारी वगैरह, देखो कितनी गंद है एकदम। तो बाप क्या करते हैं, है बाप तो फिर भी आकर के कल्याण करते हैं ना, सबका कल्याण करते हैं, सबको सदगति देते हैं ना, है जो चोरी चकारी डकैती लफंगई करते रहे, गुंडागिरी करते रहे, उनका भी उनकी भी सदगति कर दी। हाँ ये जरूर है कि सदगति जो देते हैं, परंतु जो कुछ भी वो पाप कर्म करते हैं उनका हिसाब किताब गुप्त है। वो भी गुप्त है, देखो उसे हिसाब किताब के बारे में कोई को मालूम थोड़ा ही पड़ता है। जब गाया जाता है बाप है सर्व का सदगति दाता, उसमें सब आ गया, सारी सृष्टि आ गई। फिर जो गति है ना, पर तो बाकी जो डिटेल में है कि जो पाप जिसके ऊपर सिर पर हैं, उनका क्या हिसाब है, सो तो गाया हुआ है कि ये कयामत का समय है। क्या कयामत का समय है, सब अपना अपना हिसाब चुप चुप करके आखिरी इंसाब का कल्याण होता है। क्या कयामत माना ही क्या, मत माने अकल बुद्धि, क्या तुम्हारी मति है, क्या अकल है, मनमत है या परमत है या भगवान की श्रीमत है, क्या मत है, वो इस टाइम पर ही प्रत्यक्ष होता है। इस टाइम पर कयामत के टाइम पर तो कल्याण तो होना ही है ना बच्ची। देखो पाप करते हैं मनुष्य, उनको भोगना भोगनी पड़ती है, फिर भोगना भोग करके फिर भी तो कल्याण हो जाता है ना, बीमारी सहन करके, बीमारी में दुख होता है ना, तकलीफ होती है ना, तो बीमारी सहन करके फिर अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि पाप का वो हिसाब किताब चुकतू करके फिर भी तो अच्छे हो जाते हैं ना, है अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि पाप का वो हिसाब किताब चुकतू करके, ये तो जो पाप है सिर के ऊपर, इतने के ऊपर बहुत ही पाप है, तो जरूर उनका कुछ तो हिसाब किताब मिलता होगा ना। तो बाप ने समझाया बहुत, ये जो सजा मिलती है वो बच्ची बहुत ही एक, जब सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है तो उस एक ही सेकंड में क्या वो पाप सबको नहीं भुका सकते हैं, क्या कहें ना, एक सेकंड में जनक को जीवन मुक्ति मिली, तो जीवन मुक्ति मिल सकती है उनके अच्छे कर्मों की एक सेकंड में, तो एक सेकंड में जिन आत्माओं ने बुरे कर्म किए हैं उसका फल नहीं दे सकते, दे सकते हैं? एक चक्री में दे सकते हैं, चुटकी में। तो ये समझाया बाप ने कि जैसे काशी करवट खाते हैं तो बस शरीर छोड़ दिया, काशी करवट खाने के बाद क्या कोई जाकर के शिव बाबा से मिला है? नहीं मिला। बाप कहते हैं वो जो उनका पाप का बोझ है, उनके पाप के बोझे का हिसाब किताब चुकतू कराए करके फिर काशी करवट खाने के बाद दूसरा जन्म में फिर शुरू हो जाता है और उनके नए सिरे पाप शुरू हो जाते हैं। वो इतना जो बोझ है वो खत्म हो गया जिन्होंने काशी करवट खाई। तो बोझा तो भोगना है ना। समझो कोई ने बीच में अपना ऐसे काशी करवट खाया बीच के जन्म में, अच्छा पास्ट का काशी करवट खा के हल्का कर लिया, फिर भी तो शुरू हो जाता है ना, वापस तो कोई नहीं जा सकता है। काशी करवट खा करके मरे या कुछ भी करे है, काशी करवट खा के मरे, भावना है कि हम भगवान के ऊपर अर्पण हो गए, तो भावना अच्छी हुई या खराब हुई है? अच्छी भावना से काशी करवट खाया तो भले वो अच्छी भावना से काशी करवट खावे अर्थात मरे, या भले कुछ भी करे, सुसाइड कर ले, जीवघात कर ले, फिर भी वापस तो कोई नहीं जा सकता। मनुष्य तो यहाँ बहुत ही समझते हैं, ये सन्यासी उदासी वगैरह वगैरह कहते हैं ये सत्य पुरुष था, बहुत उत्तम पुरुष था, अब इनको कोई जन्म थोड़ा ही मिलेगा। ये नहीं समझते हैं, अरे भगवान को ही जब इस सृष्टि पर बार बार आना है तो आत्माओं को जन्म न मिले ये कैसे हो सकता? अगर आत्मा को जन्म ही न मिले तो आत्मा विनाशी हो गई या अविनाशी हुई है? विनाशी हो गई? नहीं। तो देखो बच्चे ये इतना सब कुछ कितना समझना है। तो देखो बाप कहते भी हैं ये ज्ञान तो वैसे एक सेकंड का है, एक सेकंड में जीवन मुक्ति लेने की है, फिर भी देखो कितना समझाते रहते हैं। पढ़ाई है ना, फिर भी स्कूल की पढ़ाई है और बाप रोज पढ़ाते रहते हैं, है? पढ़ाते रहते हैं या नहीं? कि 69 से पढ़ाना बंद कर दिया जब ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा है? अरे पढ़ाते रहते हैं, बाप खुद पढ़ाते रहते हैं या ब्रह्मा की शरीर छोड़ने के बाद पढ़ाना बंद कर दिया है? पढ़ाते रहते हैं, रोज पढ़ाते रहते हैं। अच्छा पढ़ाते रहते हैं जो शिव बाबा, वो तो पढ़ाई उनकी आत्मा में नूद है।